నమోరిహంతాణం నమో సిద్ధాణం నమో వైరీయాణం నమో వజ్రాయాణం నమో లోయే సవ్యసాహూణం మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమో గణి మంగళం కుందకుందాద్యో జైని ధర్మోస్తు మంగళం సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వకల్యాణకారకం ప్రదానం సర్వధర్మాణాం జైనం జయతు శాసనం జైనం జయతు శాసనం నమః సమయ సారాయ స్వానుభూత్యాచకాస్తే తిస్వభావాయ భావాయ సర్వీభావాంతరిచ్ఛదే వందిత్తు సవ్యసిద్ధి ద్రోమచల్మణోభవం గదిం పత్తి భూచ్ఛామి సమయ పాహుర్ మిళవో సుదు కేవలీ వణిదం. 31 गाथा पढ़ना अपन को. जो इंद्रिय जड़ता, बोला सभी ने, जो इंद्रिय जड़ता जो लाल सहाबाधियम मुड़दियादम తమ ఖలు జిదింద్రియంతి భడంతి జేళిచ్ఛిదాసాహు తిజేళిచ్ఛిదాసాహు కర ఇంద్రియజై జ్ఞానే స్వభావేరు అధిక జానే ఆత్మికు నిశ్చయ విశేషస్థిత సాధుజన్ భాసే జితేంద్రియ ఉనికో. జు ఇంద్రియో జీత కర్ జ్ఞాన స్వభావ కే ద్వారా అన్య ద్రవ్య సే అధిక ఆత్మా కో జానతా హై ఉసే నిశ్చయనే మే స్థిత సాధు పరమేష్ఠి జితేంద్రియ కహతే హై. యానీ किसे जीतना है? इंद्रियों. किस साधन से जीतना है? कि ज्ञान से. क्या मिलेगा? कि मोक्ष मार्ग और मोक्ष फल मिलेगा. कैसे पता चलेगा कि इंद्रिय जीत ली? कि इंद्रियों से अधिक आत्मा दिखेगा, न्यारा दिखेगा. अभी कैसा दिखता है? आंख ना हो तो कैसे दिखेगा, कान ना हो तो कैसे सुनेंगे, आत्मज्ञान होने पर कैसा लगेगा. कि ज्ञान से ज्ञान होता है. आंख कान नाक तो निमित्त कहलाते जब बहिर्मुख ज्ञान हो, इंद्रिय जनित ज्ञान हो, तब उसके इंद्रियों के ऊपर आरोप आता. सचमुच में जानने वाला कौन है? ज्ञान है. ये अधिक दिखेगा आपको, सबसे वजनदार दिखेगा. अधिक यानी न्यारा, अधिक यानी बड़ा, अधिक यानी महान, सबसे अच्छा लगेगा फिर इस विश्व में. अभी तो जीव हार रहा. आखिरी समय स्वामी जी बोल के गए कि ये जो मुनि है, यदि अन्न बस है तो संसारी है. मुनि कैसे अन्न बस होगा? उसने तो सारी पराधीनता छोड़ी, घर छोड़ा, सारे परिग्रह छोड़े, जंगल में रहता है, शुद्ध भोजन लेते हैं, अपने लिए भोजन बनाते वो भी नहीं लेते. तो फिर हम मुनिराज अन्न बस कैसे? ये जो महाव्रतादि पालते हैं, शुभराग है, इस शुभराग से अपना जीवन मानते हैं, ये अपने आत्मा से अपना अस्तित्व नहीं मानते. तो ये जीव गुलाम हो गया. इस 28 मूल गुण लिए थे आत्मा की आराधना हो. अब आत्मा की आराधना तो छूटी और इसी के पालने में लग गया. कितना बड़ा दूषण है। इसी अधिकार को सुनकर के निहाल भाई का जीवन बदला। परम आवश्यक अधिकार एक ज आवश्यक छे सट आवश्यक न थी। तो ये सुनकर के पढ़कर के तो ये कोई महापुरुष है जो उलझाता नहीं है निकालता है। ये अपूर्व बातें निकलती हैं। तो ये कहां से बोलता है कौन है? जैसे लगा कि जो आत्मधर्म थी उसी को वंदना कर ली, अर्घ चढ़ा दिया, नमस्कार किया और फिर गए। व्यवस्थाएं भी नहीं थी और सोनगढ़ गए और जाकर के एक ही प्रवचन सुना, ज्ञान ने राग जुदी वस्तु च। वस्तु ही अलग अलग, हम जिसे अपना धर्म मानते, कर्तव्य मानते, अपना स्वरूप मानते, गुरुदेव से ही सुनने मिला, ये तो कोई चीज ही नहीं। आत्मा में होता कहाँ है राग? ऐसा कभी नहीं सुना था, क्योंकि वो निरंतर ये चिंतन में रहते थे कि राग छूटे कैसे, ये विकल्प टूटे कैसे, इनका अभाव कैसे। पर गुरुदेव से देशना सुनी कि ज्ञान तो अलग चीज है, राग तो अलग चीज है, ज्ञान में तो राग जानने में आता है। एकदम अलग लगा कि यही है कोई तत्व, और भाव भाषण हो गया, जीवन धन हो गया। तो ये काम द्रव्य लिंगी मुनि पर्याय में भी अपन ने नहीं किया। डॉक्टर साहब अनंत पर्याय होगी, मुनि मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवक उपजाए। इतनी कसाय मंद के घानी में पेलो तो उपना करें, पर इतना सा काम नहीं कर पाए कि ये मुनि मैं नहीं हूं, ये 28 मूलगुण का पालने का राग मैं नहीं हूं, मैं तो कोई अलग तत्व हूं, चैतन्य तत्व ज्ञायक। ये भेद विज्ञान नहीं हुआ तो उसे अन्न बस कहा। किसी जो पांच इंद्रिय के विषय छोड़कर जंगलों में रहते हैं, अपने लिए बनाया गया भोजन भी नहीं लेते, कोई विषय सुखी कामना नहीं है, स्वर्ग आदि का लोभ नहीं है, और ईमानदारी से 28 मूल गुण पालते हैं, और उन्हें जिनवाणी कहती है ये मुनि पराधीन है, अन्न के बस है, इसे जीना नहीं आता। तो इससे पता चलता है ना कि मार्ग कुछ अलग है, आत्मा कुछ अलग चीज है, आराधना कोई अपूर्व चीज है। ये कोई पाप अकेले छोड़ देने से ये संसार नहीं छूट सकता। तो अभी अपन को इस गाथा में कल अपन ने द्रव्य इंद्रिय की बात की थी बाबूजी, द्रव्य इंद्रियों को कैसे जीतना, तो क्या उत्तर दिया था कि निर्मल भेदाभ्यास से जीती जाती। काहे से वेद विज्ञान करना है? द्रव्य इंद्रियों से कैसे वेद विज्ञान कराया था? कुछ तो याद रखना है अपन को, स्नान का पर तो चला जाएगा क्योंकि वो दिनों में आता है, भीतर आए तो नहीं जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि द्रव्य इंद्रियों को जीतना है। अभी तो पर द्रव्य, इसे क्या जीतना? कि ये तो पर द्रव्य, इसे नहीं जीतना, पर ये भ्रम से ही आत्मा दिखती है। ये ही दिखता है कि मैं हूं, ये नहीं दिखता है कि जो मैं हूं वो तो दिखाई नहीं देता। जो देखता है जिससे पता चलता है कि ये इंद्रियां हैं वो तो दिखाई नहीं देता, और जो इंद्रियां बिल्कुल जीव नहीं है वो ही आत्मा दिखता है। ऐसा उलट हो गया, पलटा गया। अब इंद्रियों को जीतना है तो भ्रम तोड़ना है। कैसे भ्रम तोड़ेंगे कि ये इंद्रियां मैं नहीं हूं? ये कैसे सीखेंगे दिलीप भाई कि ये इंद्रियां शरीर परिणाम को प्राप्त, एक बहुत बड़ा हेतु दिया, आपको प्राप्त नहीं है, आपने इन्हें बनाई भी नहीं है, ये नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना होती है, और शरीर रज वीर इसमें निमित्त होते माता पिता के, और ये सदपुद्गल परमाणु निर्माण नाम नाम कर्म आता है, वो इसकी रचना प्रोपोर्शनेट करता है। यानी कोई डॉक्टर और इंजीनियर तो वकील वैज्ञानिक तो समझ नहीं सकता है कि बंद कैसे जाता, किडनी लीवर लंग्स स्टमक स्प्लीन सब कैसा व्यवस्थित बनता, नाक के नीचे ही मुख बनेगा, इसके ऊपर ही आंखें और फिर माथा बनेगा, ये बनाता कौन सा रहता है? ये तो कोई वैज्ञानिक तो पागल हो जाएगा, इसे नहीं समझ सकता। पर अपने भगवान ने बताया कि जगत में विश्व में ऐसी पुद्गल परमाणु रज भरे पड़े हैं, और ये जीव के परमाणु परिणाम से ऐसे कर्मबंध होते हैं, और उनका उदय आने पर वो निमित्त बनते हैं, वो भी नहीं बनाते क्योंकि वो कारमार वर्गणा है, और ये जीव के साथ शरीर है तो ऐसा व्यवस्थित बनता है जैसे कोई आर्किटेक्ट बनाता हो, ऐसा प्रोपोर्शनेट बनता है, ऐसी नस नर्व सब बनती, आंख गोलक हिलना चाहिए, जीव आगे बाहर भीतर होना चाहिए, जी स्थिर रहना चाहिए, ऐसा कैसे कि इसमें बाल नहीं आने चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ये कौन बनाते रहता है। थोड़ा सा सर्वज्ञ देव से जुड़ेंगे तो अपना माता ठही हो सही हो, कि इसका कोई करने वाला नहीं और हुए बिना रहेगा, ऐसी प्रकृति की व्यवस्था। बाबू जी अपन भोजन करते हैं तो आप पचाते हो खून बनाते हो कि अपने आप बनता, अपने आप बनता, ये कहाँ की मशीन आई होगी, कैसी लगी हुई है, ऑटोमेटिक प्लांट कंप्यूटराइज व्यवस्था है, यही तो समझने के लिए बैठे तो सारा भार उतर जाता है। यदि अपन सरस्वती जिनवाणी के पास आते हैं ना तो ये चिंताएं दूर हो जाती कि तुम भोजन पचाते हो क्या, नहीं पचाते, जैसे भोजन नहीं बनाते शरीर नहीं बनाते, ऐसे विश्व के एक भी काम तुम नहीं करते और होता स्वयं पूरे विश्व का काम चल रहा। अभी जो वाणी निकलना है कौन बोल रहा, प्रवचन कौन कर रहा, दीदी वाणी देखो इस समय ऐसी निकलना, और इसका भी कर्ता जीव नहीं, राग से भी वाणी नहीं निकलती, ज्ञान से भी वाणी नहीं निकलती, इंद्रियों से भी वाणी निकलती नहीं निकलती, 65 दिन 66 दिन वाणी नहीं निकलना है तो नहीं निकलना, और जब निकलना है तो कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए अपन को ये जिन वाणी मिल गई है उसको समझकर धर्म करना। तो द्रव इंद्रियों को जीतना यानी क्या कहलाता है, कि द्रव इंद्रिया मैं नहीं हूं का अर्थ है इससे मेरा जीवन नहीं है, अर्थात इससे मुझे ज्ञान नहीं होता, सुख नहीं होता, ये मेरे कोई काम की नहीं है, आतंकवादी कर्म का फल है, अपराध की सजा है जिससे आप इसके भीतर बैठे हो, ये शोभा नहीं देती, ये गंदा शरीर, सिद्धों का जीवन शोभा देता है जहां शरीर नहीं, और बिना आंख के सिद्ध भगवान देखते होंगे कि नहीं बाबू, आंख नहीं है ना सिद्ध भगवान की तो उन्हें दिखाई देता होगा कि? तो कैसे दिखता है? सिद्ध भगवान को बिना आंख के दिखता है और अपन को आंख से दिखता है, अपन को भी ज्ञानी से दिखता है, सिद्ध भगवान को भी ज्ञानी से दिखता है, पर अपन मानते नहीं इसलिए आंखें मिलती रहती। ये शरीर क्यों मिलता रहता है, क्योंकि तुम्हें आत्मा की जरूरत नहीं है, शरीर की आवश्यकता है, तो ऐसे कर्म बनते हैं कि फिर शरीर मिलता है, फिर शरीर मिलता है, शरीर नहीं चाहिए तो अशरीरी को देखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विधि भगवान ने नहीं दी। अभ्यंतर सु ज्ञान में देखे जो अशरीर, शरम जनक भव ना धरे पिए न जननी छी, देह छता जेणी दशा बरते देहाती, देह होने पर भी देश। माता जी कहती थी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ हूँ कि विदेश में हूँ, शरीर हेब की भी नहीं है, ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि जिस समय गहरी अनुभूति होती है अपने में जुड़ती है तो ये पता नहीं चलता कि, और हमें ऐसा लगता है कि हम बैठे, आप कुर्सी पे बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, भगवान ऊपर बैठे, ऐसा लगता है, ये क्यों लगता है, ये संकर दोष कहलाता है, किसी को किसी में मिला करके देखना, मिलते हैं कि नहीं, मिलते नहीं तो कहाँ मिलते हैं, अज्ञान में मिलते हैं, और दूर कहाँ करना है, अज्ञान जहाँ है वहां ज्ञान होना चाहिए। चश्मा घुमा बाबू जी, आप चश्मा पहनते तो आप चश्मा अपनी भोजनशाला में रख दो और वो घूम गया तो चश्मा घुमा है कि जहां का तहां रखा, वहीं रखा है, फिर वो घुमा क्या कहलाता है, घूमी चीज क्या कहलाती है, कि ज्ञान में विस्मरण हो गया कि वहां रखा है, फिर स्मरण भी कहां आएगा, ज्ञानी में, तो चश्मा मिलेगा कहां, ज्ञान में मिलेगा, वो घूमा ही नहीं है तो मिलेगा कहां। ऐसी पढ़ाई करा रहे कि आत्मा ज्ञान से ही जानता है, ज्ञान से नहीं जानता है, इंद्रियां ज्ञान नहीं कराती हैं, जब तुम जानते हो तब इंद्रियां निमित्त बनती। प्रश्न पूछ रहे दिलीप भाई, बता आंख से हमें, आंख निमित्त कह रहे, आंख से हमें दिखाई देता है कि नहीं, जब हम देखते हैं तब आंख निमित्त होती है, आंख से दिखने दिखाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि आंख तो जड़, उसमें चेतन है, खिड़की की तरह। तो इस शरीर परिणाम को प्राप्त है द्रव्य इंद्रियां, और उपाय ये है निरंतर भेद अभ्यास चाहिए, आप निर्मल भेद अभ्यास चाहिए। निर्मल शब्द क्यों जोड़ा, क्योंकि आप पढ़ करके कहते हो कि आंख भिन्न है और आत्मा भिन्न, आपको शुभ भाव है, इस समय राग आ रहा कि ये बात कहते तो रिजनवाणी, तो अपन को भी ऐसे ही कहना चाहिए। तो ये राग से पढ़ करके समझ करके ऐसा कहोगे भी तो जिनवाणी विश्वास नहीं करे। वो कह रहे भेद अभ्यास भीतर करो आप। भेद अभ्यास कितने में होता है, दो पार्टी में, एक अपनी होना चाहिए और एक पर होना चाहिए। तो आत्मा भिन्न है और ये पांच इंद्रियां भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान सही है कि नहीं? जय आत्मा भिन्न है और पांच इंद्रियां शरीर भिन्न, ये भेद विज्ञान सही है कि नहीं? ये भी वेद विज्ञान, ये तो पढ़ाई है। फिर क्या है वेद विज्ञान, जब वो अपने को ज्ञान स्वभाव देखता है तो उसे इंद्रियां नहीं दिखती, तब कहता है कि इंद्रियां मैं नहीं हूं। ऐसा पढ़ने से भगवान को विश्वास नहीं होता कि तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि ये तो लिखा है इसमें कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और तुमने पढ़ा और तुम भी बोलोगे। अभी छोटे से बच्चे से पूछो कि बेटा तुम्हारा क्या नाम पाठशाला के बच्चे से, तो ये तो कहेगा सुद्धाता मैं मेरा नाम, तो क्या करते हो, मात्र जानना मेरा काम, कहाँ रहते हो, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, काय में आराम मिलता है, ऐसा शास्त्र पढ़ के बोलेगा। और उसे पूछोगे ये कपड़ा किसका है, हमारा है, और अभी तो कह रहे थे सुद्धाता, तो कुछ निर्णय नहीं है ना। ऐसे ही मोही जीव का शास्त्र पढ़ करके भी निर्णय नहीं, ये शब्द डाला उनने निर्मल भेद अभ्यास। निर्मल यानी जिसमें किसी भी प्रकार की उपाधि न लगे, सीधा निखालस ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान को जाने, तो उस ज्ञान में ये पड़ोसी देह नहीं दिखेगी, तो पड़ोसी देह ही नहीं दिखेगी, तो देह से ज्ञान नहीं दिखेगा, तो फिर ज्ञान से ज्ञान दिखने से गेह का रस टूट जाएगा, तो गेह का रस टूटेगा, गेह गया एक संकर दोष टूटेगा, तो मोक्ष मार्ग जग प्रकट हो जाए और ये जीव चौथे गुण स्थान में प्रथम नंबर की स्थिति में आ जाए। आज गुरुदेव ने तीन प्रकार की स्थितियां बताई, बताई पहली स्थिति तो चौथे गुण स्थान में बताई, दूसरी स्थिति उपशम श्रेणी में बताई, और तीसरी स्थिति छपक श्रेणी में बताई, और अरहंत और सिद्ध भगवान स्थिति का फल बताया। और स्थिति किसे का, अपने में एकाग्रता को स्थिति का, और एकाग्रता कौन करेगा, जिसे पर से संबंध बिठालता था वो उससे लौटे, यानी थोड़ा सा प्रयोग तो है, ऐसे ही तो नहीं है कि सुनना है और सुनाना, थोड़ा आप अपने से बातें करेंगे तो ये उपयोग कहीं जाता है, जाता है यानी इससे नहीं निकलता, ये विषय बनाता है। विषय क्यों बनाता है, क्योंकि इसे गेह में लुब्धता बैठी, कहीं से इसे रस आता है, इसे लगता है कि ये है इसलिए मुझे ज्ञान हुआ, तो अब वो इसकी तरफ क्यों नहीं देखेगा। और जिस दिन ये पढ़ाई हो जाएगी कि ज्ञान में से ज्ञान आता है, तो ये पढ़ता हुआ भी व्यक्ति ज्ञाय को देखेगा। गेयों में ज्ञान नहीं, गेयों से ज्ञान नहीं, गेये गेये में ही ज्ञायक में गेय नहीं, है भिन्न भिन्न सत्ता नहीं कोई किसी में नहीं, ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आई हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे। ऐसा निर्मल भेद अभ्यास करना, कैसा भेद अभ्यास करना है, दिन भर धुन आना चाहिए, अरे ये ज्ञान है, ये ज्ञान क्या लाता है, ये स्वभाव से ज्ञान आ रहा। अच्छा ये हमें ऐसा लगता था ये आंख नहीं होगी, कान नहीं होगा, सामग्री नहीं होगी, तो हम कैसे जाने? ये भगवान ने क्या बताया? ये ज्ञान में से ज्ञान आता है, जिसमें जो शक्ति होती है उससे अभिव्यक्ति होती है। ये तो कोई अपूर्व बात। अब वो जीव निर्मल भेद अभ्यास करेगा और एक क्रांति हो जाएगी उसके। कोई ऐसा सुन करके बैठे कि देह भिन्न और आत्मा भिन्न, तो इतना मोटा ज्ञान तो नहीं। इसके लिए तो हृदय चाहिए, रुचि चाहिए, समर्पण चाहिए। बहुत समझ लेने से आत्मा नहीं मिलती, समर्पण से आत्मा मिलता। बहुत समझ लेना छयुसम का काम है और समर्पण जरूरत का काम। और जरूरत उसे लगती है जिसे दुख सहा नहीं जाता। अपन को दुख क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अपन को इसी में रहने का अभ्यास हो गया है। अभी अपने को पुण्य के उदय में जो चाहते हैं कुछ हो रहा है, इसलिए जीव को वो मोह का कष्ट, आत्मा छूटने का दर्द ही नहीं हो रहा। ये तो ये जगाते हैं। जैसे वैद्य कहता है, जैन साहब क्या हो गया, आपका चेहरा उतरता है? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता। और घी और तेल लगा के आ जाएंगे और अच्छे कपड़े पहन के आ जाएंगे। वो कह रहे भाई साहब आपका थोड़ा डाउन होता जा रहा है स्वास्थ्य, आप दिखाओ। और जब ज्यादा ही हो जाता है, भूल जाता है, तब कहते डॉक्टर साहब देख दो। ऐसे आचार्य जी कह रहे तुझे मुंह का रोग हो गया है, तू आत्मा भूल गया। ऐसे कैसे भूल गया? मैं सब जानता हूं, मैंने समय सार पढ़ा। अरे समय सार पढ़ लिया तो करें क्या? तुझे आत्मा याद नहीं आती हमें पता। तो कैसे मुख हो? जैसे मुख ये कैसे है? सारा जगत कैसे मुख है? ये अपना घर है, ये अपना परिवार है, ये कैसा मुख है? वो कोई कहता कि लौट के आना? अपने परिवार के लोग एक भी नहीं कहते दिल्ली भाई साहब कि आप यहाँ जाना और वापस आना। सब कहते शांति से रहो इसी मंदिर जीव के। अपना मुंह देखो ऐसा लौटा देता, 10 बजे सवा 10 बजे और एकदम से कदम उस तरफ उठते हैं जहां कोई आमंत्रण कार्ड नहीं। सब अपने अपने घर जाते जो अपने नहीं। तो एक तो ये काम सौंपा था कि ये इसके बारे में आपको उत्तर आपसे ही लेना है कि जीव शरीर परिणाम को प्राप्त है वो मेरी चीज ही नहीं, मुझे कहां मिली है? ये तो नाम कर्म ने बनाई है और नाम कर्म ले जाएगा जब उसे ले जाना है। तुम इसके बारे में शिकायत नहीं कर सकते कि मेरी आंख में मोती है, बिंदे मेरे सिर में दर्द है, मुझे भूख लग। ये सब विभाग दूसरे द्रव्य का, सेहन नहीं होता, उदय अनुसार कुछ योग बन जाते हैं, विषय आदि सेवन भोजन पानी हो जाए। पर तुम ये कहो कि ये बूढ़ा क्यों हो गया, बाल सफेद क्यों हो गए, अब हमें क्यों नहीं दिखता, ये कंप्लेंट पुद्गल द्रव्य की आप करोगे तो भगवान सुनेंगे। आप अपनी शिकायत करो। अपनी शिकायत कुछ है ही, जैसे अपन से कोई पूछे कि मंदिर काहे के लिए जा रहे, तो ये कोई प्रश्न नहीं अपने पास के इसलिए जा रहे। क्योंकि अपन को कोई इलाज करवाना कहाँ है, अपन तो अपने प्रसन्न होने के लिए आते हैं, प्रसन्न होके जाते। वो कह रहे कि बहुत बड़ा रोग है, जैसे कहते हैं आत्मभ्रांति सम रोग में, उसका एक नाम है मोह, जिसको गुरुदेव तीन तीन गाथाओं में सुनाते रहे। मोह का भाव ऐसे होता है, ऐसे होता। आज तो कितना गजब है, क्रोध मान माया लोभ इन सब का कैसे संकर होता है और कैसे निपटता है वो जीव, भगवान बनता कैसे? शंकर शब्द डाल के इतना अच्छा लगा गुरुदेव श्री जब उसका खुलासा कर रहे, क्रोध आएगा तो आप क्रोध को कैसे जीतोगे? डॉक्टर साहब सोचना, अपन को गुस्सा आती तो गुस्सा को जीतोगे कैसे? आज विधि निकली थी, उपशम श्रेणी वाले को ही बताई और छपक श्रेणी वाले को ही बताई, और ये चौथे गुण स्थान में भी यही लगती, यही विधि लगती, पर वो बड़ी स्तुतियां कहलाती, वो अबुद्धि पूर्वक होती है, अंदर अंदर होती है। और ये तो अभी समझ में तो आना चाहिए कि क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है, अभी तो देह से निपटा रहे हो कि तुझे आंख से नहीं दिखता है, तेरे माथे से तुझे बुद्धि नहीं आती है, कद्दू काजू बादाम हलवा खाने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, तेरा ज्ञान तेरे भीतर से बढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे बच्चों की पढ़ाई, यानी कोई अभी नया नया आया हो कि क्या पढ़ाई कराते शरीर मेरा नहीं, ये तो हम बहुत दिनों से जानते हैं। ये कुंद कुंद देव 31 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि भाई साहब ये इंद्रियों से हार गए हो आप। तो एक तो उपाय ये बताया था, निर्मल भेदाभ्यास करना। तो पता कैसे चलेगा आपको कि आप चैतन्य स्वरूपी हो, ज्ञान स्वभावी हो, सूरज हो, चैतन्य मूर्ति हो, और इस चैतन्य मूर्ति के सामने ये जड़ इंद्रियां कुछ नहीं लगती। कहां ज्ञान सूर हो, कहां अचेतन पदार्थ। ऐसा जब तुम्हें ज्ञान का महात्मा आएगा तब तुम्हें इस जड़ देकर रस टूट जाएगा, एकत्र टूट जाएगा। तो फिर ये देह की आम बुद्धि छूटने से देह मिलना बंद होगी। अभी तो ये हर भाव में जहां खड़ा होता है उसे शरीर खड़ा हो जाए, और शरीर मिलेगा यानी व्याधि का मंदिर मिलेगा। भूख लगेगी, प्यास लगेगा, बाथरूम जाएगा, पीछे जाएगा और पसीना निकलेगा, और फिर जन्मेगा और फिर मरेगा, सब सारे दोष होंगे, शरीर मिलेगा। यदि तुम्हें इन दोषों से बचना है, भूख प्यास आदि के कष्टों से, और आनंद भोगना है, तो तुम अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जान। तो कैसे जाने, कल बताया था कि इनको अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, अति सूक्ष्म कह के कहा था कि तुम्हें ये बाहर बाहर से तुम पकड़ना चाहो कि अब हमें समझ में आ गया है, हमने भी पढ़ा है, अब हमारे भाव अच्छे रहने लगे, तो ये सूक्ष्मता नहीं कहलाती, ये स्थूल तक कहलाती। कि मंदिर आना ये बहुत स्थूल परिणाम उदय लाया, फिर अपन को ये बात सुनने मिलना ये पुण्य का उदय, इससे मिल गया ये सब उदय के काम, और यहाँ बैठने मिलना ये भी पुण्य का उदय, और समझने लायक छह समय ये भी उदय का कार्य। अभी धर्म का इसमें अभी कोई हिस्सा चालू नहीं हुआ। अब वो कहते हैं कि अति सूक्ष्म चैतन्य, सूक्ष्म क्यों कहा कि जो उपयोग इन सब को विषय बनाता था वो सब स्थूल में जाता है, और जब ज्ञान ज्ञान को भेदता है, ज्ञान से ज्ञान को पहचानता देखता है, तो वो सूक्ष्म स्वभाव को जानने वाला ज्ञान भी सूक्ष्म कहलाता। अपन को ज्ञान सूक्ष्म करना है कि नहीं बाबू जी? ये सूक्ष्म करना नहीं है, सूक्ष्म है ऐसा देखते ही वो सूक्ष्म होता। कितना सरल मार्ग है, रुचि होगा वो तो है? आपके यहाँ कोई विद्वान गया और बच्चों से कहा जयजयंत कर, तो आपके कहने से तो उसने जयजयंत पंडित और एक मिनट में हाथ कर लिया पीछे। क्यों अब वो हाथ पीछे क्यों ले जा रहा? क्योंकि उसे महिमा तो है नहीं, आपने कहा तो कर दी। उसके चित्त में नहीं आएगा जब तक उसका हृदय कैसे झुकेगा। ऐसे ही भगवान ये कहते, तुझे चैतन्य का महिमा, ज्ञायक की महिमा, अपना अस्तित्व अपने से नहीं दिखेगा तो ये जड़ का मुंह नहीं छूटेगा उन्हें मालूम, और नहीं छूटेगा तो बहुत संसार विकट है। हम चाहते हमारा संग पूरा घर परिवार साथ रहे, तो ये साथ साथ रहने के में भाव कुत्ते बिल्ली की पर्याय भेद देती, वहां बहुत जल्दी साथ साथ मिलता, छह छह बारह बारह, सुअर भी बारह बारह बच्चों को साथ रखता पेट, सुकर भी। किसी दुर्दशा है संसार की, क्या चाहते हो आप? अब कुछ डिमांड नहीं करो, कुछ नहीं चाहिए, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। एक तो ये चैतन्य स्वभाव को जब आप अपनापन दोगे, देखोगे, तो ऑटोमेटिक द्रव्य इंद्रियों से अपना वेद विज्ञान होगा, तो फिर आपको सपने भी नहीं आएगा कि आंख से दिखता है, फिर ऐसा लगेगा देखो हम हैं इसलिए ज्ञान हो रहा, फिर ऐसा नहीं लगेगा ये है इसलिए मुझे ज्ञान। अब दूसरी प्रकार की विजय, भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों को, विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ज्ञान को खंड खंड रूप बदलाती है, ऐसी भाव इंद्रियों को प्रतीत में आने वाली अखंड एक चैतन्य शक्तिता के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना सूय भाव इंद्रियों का जीतना हुआ। अभी पहले तो समझे कि भाव इंद्रिय क्या कहलाते, अपना आत्मा है ज्ञान स्वभाव, और अपने आत्मा से प्रति समय होता है ज्ञान, और ज्ञान से आत्मा का पता चलता है कि जिसका जानना लक्षण है वो वस्तु जीव है, ज्ञान स्वभावी आत्मा, ऐसा पता चला। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये आत्मा तो है, ज्ञान स्वभावी है, प्रकट ज्ञान है, परंतु इसे भावेंद्रिय से जीतो आप, तो भावेंद्रिय क्या कहलाते? तो कह रहे जो आपके प्रगट ज्ञान है वो इन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञेयों की जानकारी में दिन भर लगा रहता, और इन इंद्रियों के माध्यम से जब जानता है तो ये खंड खंड ज्ञान कराती है, खंड खंड कराती है यानी खंड खंड ज्ञान होने में निमित्त बनती है। जैसे वर्ण देखना है अभी इसी मंदिर भगवान का, तो वो आंख से ही देख पाओगे, किसी की आंख नहीं हो तो भगवान का रंग नहीं देख पाएगा, कर्ण इंद्री से सुनोगे तो कितना सुन पाओगे जो आ रहा उपयोग लग रहा। तो एक एक इंद्री के विषय पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण एक साथ, और अपन को एक साथ पूरे पुद्गल के विषयों को जानने की वासना कि हम सबको एक साथ जाने, सबको एक साथ भोगे, खाना भी खाते जाएं, टीवी भी देखते जाएं, गाना भी सुनते जाएं, और लड़के को गोद में भी लिए रहें, और सोफा पर नरम 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 सोफा पर ही बैठे रहें, कितनी इंद्रियों के सुख हो गए। नरम भी गदेला चाहिए, सुंदर वर्ण चाहिए, मधुर संगीत चाहिए, स्पर्शन इंद्री ज्ञान इंद्री सब चाहिए इसको। अब देख कितना पाएगा, ये अपने यहाँ एक कंडीशन रखिए कि जब तुम देखते हो तो सुनते नहीं हो, और जब सुनते हो तो देखते नहीं, और अपन को तो एक साथ दोनों दिखाई दे। तो तुरमल जी ने लिखा कि इतना जल्दी ज्ञान ट्रांसफर होता है कि जिससे अभी देख रहा था उसी समय सुन लेता है थोड़ी अंतराल। तो इस तरह से पांच इंद्री के विषयों को जानने की वासना, और जानेगा कैसा, खंड खंड जाने, खंड खंड जानेगा। तो ये अपन ने इस लौकिक जानकारी में लगाया कि हमें जगत के जीव पदार्थों को जानना है, खंड खंड जानते हैं, और जानने की इच्छा बहुत होती है, सारे विषयों को एक साथ जान ले, और जानने की सामर्थ्य है नहीं, तो वो इच्छा से त्रस्त रहता, दुखी रहता। लड़का देखना चाहता है दूसरा सीरियल खेल वाला, और अपन को देखना है आज तक एनडीटीवी, तो वो दोनों की टकराहट होती है, टीवी एक है और दोनों को विषय अलग अलग बनाना, तो तकलीफ हो गई कि नहीं भाई, अभी कैसे कष्ट मिटे। अच्छा वहां से निकल के आए, चलो मंदिर में आए, अब तो थोड़ी शांति मिलेगी ना, वो भाव इंद्री से निपट, तो अब इसको पढ़ने में लगी, तो इस समय सार पढ़ा, नियम सार पढ़ा, प्रवचन सार पढ़ा, तो यहाँ अपन को ज्ञान हुआ कि आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, छह द्रव होते हैं, सात तत्व होते हैं, नौ पदार्थ होते हैं, पंचास्तिका है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, ये जानकारी हुई। तो ये खंड खंड ज्ञान है कि अखंड ज्ञान, ये भी खंड खंड ज्ञान। अच्छा अभी शास्त्र ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है कि आत्मज्ञान, ज्ञान है, और ये जीव क्या मान रहा हम धर्म करके आए, तो इनको तो करुणा आती है कि इसका होगा क्या, ये तो पढ़ सुन करके मानता है धर्म कर रहे, ये तो भाई बहिर्मुख था ना इसका ज्ञान, कल ही बताया था, आप क्या बताया था कि डॉक्टर ने बाबू जी बताया कि भाई तुम्हारा ये स्पॉन्डिलाइटिस यहाँ की नस दबती है, और सीधे बैठक और थोड़ी एक्सरसाइज ऐसी करो, ऐसा ऐसी एक्सरसाइज करो, तो उसने एक्सरसाइज बताई और डॉक्टर ने विधि बताई, अपन ने सुन ली और सुन करके आए, तो अपना रोग दूर हो जाएगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा दूर, अपन ने सुना तो है। तो ये कह रहे कि कर क्या रहे हो आप, समझ रहे कि जैसे मैं साथ सुन रहा हूं तो मेरा काम हो गया। वो कहते एक्सरसाइज तो करोगे कि नहीं करोगे, भोजन रखा है, भूख लग रही है, परंतु भोजन करने से ही भूख मिटती, उपासित होता हुआ शुद्ध नाम डाल, छठवीं गाथा की टीका, क्यों ये शुद्ध तो है पर कोणे छे, उपासित होता हुआ शुद्ध, उपासना यानी जो तेरी श्रद्धा ज्ञान और आचरण का विषय जगत बन रहा था, विषयों में लग रहा था, अपने पास साधन यही था ना प्रगट ज्ञान, तो इसको अपने में लगा, तो ये लगाएगा कौन, जैसे आत्मा की भूख लगी वही तो देखेगा आत्मा, आत्मा को सुन लेने से आत्मा मिलेगी कि नहीं, ये कह रहे नहीं, ये भाव इंद्रिय का काम। तो अपन ने एक तो विषयों से विराम लिया, मंदिर जी आए, अब मंदिर जी में सच्ची सच्ची बातें सुनी जो इस जगत में दुर्लभ है। कौन कहता है कि तू आत्मा है, ज्ञान स्वभाव ही है, राग तेरा स्वरूप नहीं, ये बातें तो बहुत दुर्लभ है। अभी सुन ली तो अपन को सुनने से आत्मा बाबूजी मिलेगी कि नहीं? तो कहते नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सुनना आपको इस इंद्रिया निमित्त बनी थी, मन विचारने में निमित्त बना था, ज्ञान में धारणा में आया था, नया प्रमेय मिला था, इंद्री ज्ञान में एक रीडिंग बढ़ी थी कि आपको पता चल गया है विश्व में 6 द्रव होते हैं, द्रव गुण पर्याय होता है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं होता है, ये आपको सुनने समझने में रीडिंग में आया था, परंतु इसको देखा कहाँ है आपने? जैसा बताया ये रसगुल्ला मीठा है, बहुत अच्छा लगता है, परंतु अच्छा लगता है सेवन करने पर की बातों में? तो वहां तो अपन पूरा प्रयोग करते, सिर्फ रसगुल्ला रखा रहा है कि हाँ पता है ज्ञान तो हो गया अपन को, उसका तो सेवन करके चैन मानते। ये बच्चा बहुत अच्छा खड़ा हो ना तो उसे उठा लेते, चूमते तब अच्छा लगता, और इसको भोगना नहीं चाहता जी, इसको सुनने ही में संतोष हो गया। तो इनकी कैसी करुणा होगी? कुंदकुंद देव ने तो सीधा लिखा, भाई साहब इंद्रियों से निहारे हो तुम। अब अमृतचंद देव जानते थे ये बहुत चालाक आदमी है, ये इतने सीधे मानने वाले नहीं, इनको खोल खोल के बताओ कि ये पुद्गल मुर्दा है, अचेतन है, इससे तुझे कोई सत्ता और ज्ञान नहीं होता है, और दूसरा इनके माध्यम से तेरा जो ज्ञान बर्बाद हो रहा है इस तरफ जा रहा है, चाहे धर्म के क्षेत्र में जाए और चाहे कर्म के क्षेत्र में जाए, वो जो ज्ञान होता है वो छैवसम ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, गेय का ज्ञान है, बहिर्मुख ज्ञान है, उस ज्ञान में ज्ञायक है कहाँ? जब ज्ञान में ज्ञायक नहीं है तो आनंद भी कैसे आएगा इसे, तो कैसे जीते हो? अपन ने जितना पढ़ा वो सब बेकार है दिलीप भाई, इतने साल से लगे अपन, 2500 साल हो गए, सारी पढ़ाई बेकार है। कि आपने जो पढ़ा उसका निषेध जनवाणी नहीं करती, क्योंकि ये समझना तो ही पड़ेगा, 6 द्रव्य 7 तत्व, स्वामी जी कहते 16 लाना चाहिए समझना चाहिए, 6 सामान्य गुण, 6 कारक, 4 अभाव आदि पढ़ाते थे। इस तरह से जीव ये पढ़ लेगा तो इससे क्या होता है, ब्रेन वास होता है, मस्तिष्क में जो उल्टे सीधे प्रश्न उठते हैं ना वो उठना बंद होते। अपन ने निर्णय कर लिया कि विश्व किसे कहते हैं, कि विश्व 6 द्रव्यों के समूह को कहते, तो अब अपन को 6 द्रव्य संबंधी आकुलता नहीं होगी कि ये 7वां द्रव्य बनाना हो या घट के नष्ट होके 5 रह जाएंगे, ये तो अनादि निधन कुदरती व्यवस्था है, इसे ना बनाना है ना बिगाड़ना है ना कुछ हुआ है, आपको तो सिर्फ जानना है। थोड़ा इसमें भावेंद्री में बाबू जी क्या बताया इसमें, कि आप जो जानते हो जो भी जानते हो उसको सर्वथा एक किनारे करो, आत्मा के बारे में भी जानते हो तो उसे सर्वथा आत्मा नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि इसके बिना ही आत्मा अपने आप में परिपूर्ण होती, ये जानकारी से आत्मा नहीं टिका है, आत्मा अपनी सत्ता से टिका है और उससे ज्ञान होता है, ये पढ़ के ज्ञान नहीं होता है। और हम क्या कर रहे थे कि इसे पढ़ करके आत्मा जानना चाहते थे, और आचार्य देव क्या बताने के लिए पर? कि इसमें ये लिखा है कि तुम ज्ञान स्वभावी हो, ये पढ़ो। ये समझ में आ रहा, स्वामी जी काय के लिए आए थे? वो इसलिए नहीं आए थे कि तुम ज्ञान करो, वो ये कह रहे थे कि ज्ञान स्वभावी हो ऐसा निर्णय करो। तो कितना अंतर आ गया, अपन तो ये सोच रहे थे कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे जितना समझेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, और इनने क्या बताया कि ज्ञानी होने के लिए पढ़ना नहीं है, ज्ञान स्वभावी हो ये जानोगे तो पढ़ना सार्थक होगा, ये पढ़ना है अपन। इंद्रभूति थे, गौतम गणधर बने, क्या पढ़े थे? ग्रीत मिथ्या दृष्टि थे, और भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं खिली थी उस समय, और पूर्वभव के संस्कार से उन्हें जाति स्मरण हुआ, कैसे मुनि तो मैंने पहले भी देखे, उन्होंने तो कहा था तो जीव है शरीर नहीं है, ये संसार असार है, यहाँ आनंद है, तो ये एकदम से उन्हें पूर्व दिव्य ध्वनि का स्मरण आया और आत्मिक ज्ञान हो गया, पौन घंटा नहीं लगा और चार ज्ञान की धारी हो गए, द्वादश सांख का ज्ञान हो गया। बताओ ये द्वादश सांख का ज्ञान कहां से आया? अपनी जिनवाणी न्याय दे सकती है कि यदि ज्ञान इससे आता तो फिर उनने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था ना, एक शब्द नहीं पढ़ा था, शास्त्र खोले नहीं, और उन्हें कितना बड़ा ज्ञान हुआ। एक ग्रीत मिथ्या दृष्टि को वो जैन बना, अजैन से जैन बना, ग्रीत मिथ्यात गया, फिर अग्रीत भी चला गया, मुनि दशा भी आ गई, द्वादशांग का ज्ञान भी हो गया और कुछ हाथ में नहीं बाहर से। इससे पता चलता है कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानमयी है, उसे ज्ञानमयी बनाना नहीं है। और अपन क्या कर रहे हैं, आप जितना ज्यादा पढ़ पढ़ के उसे ज्ञानमयी बनाना चाहते हो, और गुरुदेव ये पढ़ाते रहे कि तू ज्ञानमयी है ये पढ़। कितना अंतर है, ज्ञानी नहीं मिले ना तो ज्ञान मत खड़ा होता, ज्ञान में बोझ खड़ा कर लेता है। इतना ज्यादा छेपसम से इतने प्रकार सीख करके ऐसा लगने लगता है कि आई एम समथिंग, वो कुछ नहीं है और घटता जा। जितना अच्छा विवेक और भेद विज्ञान होगा उतनी लघुता आएगी, नरमाइस आएगी, क्षमादि भाव आने लगेंगे, क्योंकि ये तत्व तो बहुत ऊंचा है। आत्मा जानते ही भगवान बनने की जैसे विधि मिल गई हो है? तो दूसरा बाधक तत्व है भाव इंद्रियों में एकत्व बुद्धि। भाव इंद्रिय यानी जो जो छेपसम ज्ञान है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई एडवोकेट है, कोई संस्कृत प्राकृत प्राकरण व्याकरण, बहुत सब सब लोग अलग अलग उपलब्धि लिए, राणा जीवा राणा कम्म, अलग अलग उपलब्धियां, तो सबकी उपलब्धियां जो हैं वो बिल्कुल भी जीव नहीं है। ये सुना रहे दूसरा बुद्ध, यदि तुम्हें आत्मा देखना हो तो इस छेपसम ज्ञान से जय जनंत करो कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं जाननहार हूं, मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे जान करके ज्ञान सम्यक होगा, मैं पढ़ करके सम्यक ज्ञानी नहीं बनूंगा। कहां से गर्त से निकाल रहे हैं और कितना सरल कर रहे हैं कि एक बिना पढ़ा लिखा चार ज्ञान का धारी हो सकता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, उससे ज्ञान हो गया। एक वकील साहब थे बाबू जी, और वो नाव चलाने वाले से पूछे कि क्यों भाई क्या पढ़े हो, प्राकृत तो जानती नहीं होगी, कि नहीं बाबू जी, संस्कृत, कि संस्कृत भी नहीं पढ़े, वो गुजराती, कि हम तो पानी में रहते हैं, नाव चलाते हैं और पेट पालते रहते, कैसा आदमी हिंदी व्याकरण कुछ नहीं जानता, कि तेरी जिंदगी खराब, कोई काम में नहीं, पानी में गई। और इतने में जोरदार तूफान आया, तो उन्होंने वकील साहब से पूछा कि वकील साहब नाव आएगी नहीं, कि कैसी बातें करते हो, हमें सब केस कर दूंगा इस पानी के ऊपर यदि इसने कुछ गड़बड़ा। कुछ सुनने वाला नहीं, तो वकील साहब यदि तैरना नहीं आया तो अब तुम्हारी जिंदगी पानी में जाएगी, हमारी तो बच जाएगी, क्योंकि हमें ही तैरने की कला। मतलब क्या कहना मानो इसमें, कि यदि तुमने स्वाध्याय किया और तुमने कष्टों से निपटने की कला नहीं सीखी, वेद विज्ञान से अपने को ऊर्ध नहीं किया, और इसी छेवसम में प्रसन्न रहे कि हम सब जानते, तो तुम डूब जाओगे अभी, जैसे वो बकरी साहब डूब खाई के बल से डूब गया। वो उसने आत्मा जानने की कोशिश नहीं की, शास्त्र से शास्त्र ज्ञान तो कर लिया, पर शास्त्र में लिखा था कि ज्ञान स्वभावी तो तू है, तो वो एक तरफ कर दिए, तो निश्चय की बात है, ये तो ऊंची बात है, ये तो गुरुदेव की बात, ऐसा करके अपना जीवन बहुत गंभीर है, कहने में अपनी ताकत नहीं है, पर अच्छा लगता है स्वामी जी मिल गए अपन को और ये रहस्य बताते हैं। एक छोटा सा भजन क्या की समझ, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, यही है वो ग्रंथ जिसने लाखों को तारा, यही है वो ग्रंथ जिसने लाखों को तारा, ग्रंथ समय सा हमें प्राणों से प्यारा, रामो परमागमम रामो रत्नाकरम रामो जिन देशनम रामो बागेश्वरम रामो लोए सभ्य शब्द ब्रह्म ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा शुद्धातम का ज्ञान कराता। बोलोगे शुद्धातम का परमात्म हो भान कराता ज्ञान गगन में सैर कराता सिद्ध प्रभु से भेंट कराता सदियों पुराना परमागम हमारा ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा श्रीमद जी ने इसको पाकर श्रीमद जी ने इसको पाकर रत्न लुटाए झोली भर भर रत्न लुटाए झोली भर भर गुरु कान ने इसको पाया
गुरु कान ने इसको पाया
श्री बनारसी दास को भाया
श्री बनारसी दास को भाया
कली काल सरे वग यही है हमारा
कली काल सर्वज्ञ यही है हमारा
ग्रंथ समय सा हमें प्राणों से प्यारा
ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा
दृष्टि का यही ग्रंथ है
द्रव्य दृष्टि का यही ग्रंथ है
स्वानुभूति का यही पंथ है
स्वानुभूति का यही पंथ है
शुद्धातम ही परम देव है
शुद्धातम ही परम देव है
यही दिव्य ध्वनि का माखन है
यही दिव्य ध्वनि का माखन है
जीवन न्यौछावर सारा इसे पर हमारा
जीवन न्यौछावर सारा इस पर हमारा ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा।